द्रोणाचार्य के बाणों से नहीं मरे, जो उन्होंने विष को पान कर लिया, काली हर समय जितना विष था सब पी लिया, आग खा लिया, नहीं मरे और पहली एक छोटे से बाण से चुप गया, मर गए। ये सब भगवान का लीला प्रदर्शन है, इसके तहत ये माया जो में है। अज्ञानी लोग उसमें मुक्त हो जाते हैं, भगवान के लीला चित्र को नहीं समझ पाते और भगवान के भक्त लोग लीलाओं को देखकर के प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपकी ऐसी अगाध लीला है। इसलिए आप लोग जब सुना भागवत ऐसा मोहित मत होंगे, भगवान का कोई भी भक्त मरता नहीं है, भगवान ही कैसे मर जाएंगे, उनको बाण लग जाएगा, ये बात ठीक नहीं। इसलिए जो भागवत को यदि मन से पढ़ेगा भगवान उसके हृदय में आ जाएंगे, वो कभी भी माया के पास में नहीं आएगा, कभी भी नहीं मरेगा, ये कुछ नहीं। तो भागवत झूठी हो जाएगी, भागवत झूठी नहीं, हमारी दो कल्पनाएं झूठी हो सकती है, समाज के लोग झूठे हो सकते हैं, राजनीतिक इत्यादि झूठे हो सकते हैं, भगवान उनके परिकर व्यास जी सुखदेव गोस्वामी जी झूठे नहीं हो सकते हैं। इसलिए विश्वास के साथ में भागवत का आप लोग पाठ करेंगे, भगवान की लीला कथाएं स्मरण करेंगे, जो सच्चे संत हैं झूठे नहीं। आजकल कली काल में अधिकांश झूठे संत लोग घूमते हैं, जो उनको पैसे की जरूरत है और कुछ चीज की जरूरत नहीं, संतों को पैसे की जरूरत नहीं होती, उनसे इनसे मतलब नहीं, उनको दाम से, प्रतिष्ठा से, शास्त्रिक लोभ से, लालच से जरूरत नहीं। वो चाहते हैं कि ये जो संसार में जीव भगवान को भूल करके घूम रहे हैं, इनका कल्याण कैसे हो। हमको डॉक्टरों ने बतला कि आप मत जाइए कहीं, अभी वृंदावन में बैठिए, तबीयत आपकी खराब है। मैंने कहा मरना तो दिन नहीं है, जरा हरि कथा कह करके, यदि कहते कहते यदि प्राण हमारे चले जाएंगे तो सब फिर इससे बढ़कर के आनंद क्या होगा। जब प्राण तन से निकले तब गोविंद का नाम मुख से निकले, इससे बड़ा अच्छा क्या है। इसलिए मृत्यु से कभी डरना मत, कभी नहीं पर। यदि एक आदमी किशोर बचपन से किशोर होता है तो उसको दुख होता है, जबकि किशोर से नौजवान होता है तो उसको दुख कष्ट होता है, नहीं होता। तो फिर यदि हमारा शरीर पुराना हुआ है, इसको बदल करके फिर नया मिल रहा है, तो उसमें दुख की क्या बात है। इसलिए डरो मत मृत्यु से, डरना कौन डरता है, जो पापी होता है, जिन्होंने भगवान का भजन किया है, भगवान का नाम सब समय स्मरण कर रहे हैं, भगवान की लीला कथाओं को सुनता है, गले में तुलसी है, और जिसको गंगा जल और तुलसी या जमुना जल मिल गया, भगवान का नाम कानों में आ गया, वो महा सौभाग्यवान है। लोग व्रत वगैरह, इसलिए भागवत की पोथी घर में रखना, गीता की पोथी घर में रखना, कभी भूले भटके भी उसे देख लेना, बड़ी श्रद्धा के साथ मिले। घर में तुलसी का बिरवा हो उसको रोज प्रणाम करना, उसमें पानी देना, बहुत उसका बड़ा भारी फल है। नास्तिक लोग कहते हैं कि यह सब बेकार की चीज है, जिसको उपलब्ध ही नहीं है, किंतु हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र अभिनेता, हमारे कृष्ण राम, ये सब कहा है। शुद्ध सिद्धांत यह है, पुरगारी भजिए राम सब काज विचारी, सब कामों को भी यदि आपने भजन कर लिया तो आपका जीवन सफल हो गया, और पैसा बटोर लिया केवल प्रतिष्ठा, तो मरते समय देखेंगे हाय 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 ये पैसा छोड़ करके जा रहे हो, तो इसको साथ में वो माया आपको जाकर के फिर सांप का जन्म दे। एक कथा छोड़ी लघु चीज सुना दू। एक कोई व्यक्ति था, उसका नाम था कैलाश, 5 रुपया कमाया, बुढ़ा हो गया, नारद जी आए, बहुत तुमने रुपया पैसा कमाया, तुम्हारे बहुत से लड़के उड़के हो गए हैं, अब घर भी बना लिया है, बड़ा शानदार महल सब कुछ बना दिया, अब तू भगवान का भजन कर। उसने बोला जैसे देखिए मैं तो भजन अभी से आरंभ कर देता आपके कहने से, किंतु हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वो थोड़ा सा बड़े हो जाए ना, फिर मैं उनकी शादी कर दूं और एक नाती का मुख देख लूं, फिर मैं चलूंगा। अच्छा तू अभी नहीं चलेगा, मैं अभी मुझे फुर्सत नहीं है, और थोड़ा ये पड़ेगा। कुछ दिनों का बाद में आया, पूछा जी भाई कैलाश कहाँ गए। अरे कैलाश तो 2-3 वर्ष हो गया, वो मर गए। अच्छा मर गए, ये कहीं दूसरी जगह नहीं गया होगा, यहीं पर कहीं होगा। देखा क्या, एक बैल है, अरे यही तो कैलाश बहन होकर के इसके घर में आया है। कहा तुम अब भजन करेगा? अरे हमारे बच्चे अभी ना अभी छोटे छोटे हैं, अभी ना समझ हैं, मैं अभी इनके घर में हूँ, गाड़ी में चलता हूँ, बैलगाड़ी चलाता हूँ, हल चलाता हूँ और सब काम करता हूँ, नहीं तो ये बेचारे कुछ नहीं कर सकेंगे। अब जरा और थोड़ा सा बड़े हो जाए, नाती हो गया है, अब एक इसका नाती का एक लड़का देख लो मुख, बस बड़ा सुखी हो जाऊंगा चलूंगा। अच्छा ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद मैं आया, भाई वो बैल कहाँ गया? तो बैल तो मर गया। मर गया, कहीं नहीं गया होगा, जरूर उसकी आसक्ति घर में थी, घर में बड़ी आसक्ति थी। उसने देखा एक कुत्ता है दरवाजे पर बैठा। अरे कैलाश तू यहाँ पर कुत्ता होकर के बैठा है? हाँ बाबा मैं क्या करूँ, रात में हमारे नाती वोती सो जाते हैं, कोई चोर ले जाएगा, इसलिए चारों तरफ रात भर पहरा देता हूँ। भर पहरा देता है? अरे अब चलेगा भजन करेगा? थोड़ा सा और बड़ा होने दीजिए, जरा समझदार बन जाएंगे ना, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मैं और थोड़ी देर प्रतीक्षा करता हूँ, तो इस बार जब आऊंगा तो जरूर मैं तुम्हें भजन करा कर ले जाऊंगा। अच्छा बाबा उस समय हम देख लें, अभी तो हमको छोड़ो। चला कुछ दिन के बाद में फिर आए, भाई वो कुत्ता कहाँ है? तो कुत्ता तो मर गया है, कितना दिन हो गए? तो हो गया करीब एक दो महीने हो गए। अच्छा वो कहीं नहीं गया होगा, यही नहीं होगा। उन्होंने जो दृष्टि लगाया, देखा जी तो ये सांप बना हुआ है, जहां पर की पैसा रखता था वहीं पर गडरूरी मारे वहीं पर बैठा हुआ है। कहा जी अरे कैलाश तू चलेगा अभी? अरे बाबा इनको अभी होश नहीं, मैं यहां नहीं रहूं तो दूसरे चोरी चोर करके ले जाएंगे, फिर ये लोग खाएंगे क्या? अच्छा अभी देरी है तुम्हारी, अच्छा तो मैं तुम्हारी अब व्यवस्था करता हूँ, लड़कों से जाकर के तुम्हारे घर में सर्प बैठा है, जिस तक किसी को डस लेगा इसको जल्दी से मार करके भगाओ, जान से मत मारना, किंतु इसको ऐसा करना था मरा रखना। ये अच्छी बात है, बच्चों ने देखा अरे इसके घर में तो बिस्तर सांप बैठा हुआ है और ऐसे कर रहा है, गांव वालों को बुला ले, लटकिया और टैनी जो होती है ना पल्लव और क्या क्या चीजें ले आए, घर में धुआं दिया, धुआं देने से तो बेचारा एकदम घबरा गया, अब इधर तक निकलने लगा, उन्होंने पल्लव से छेद करके उसे मारा तो नहीं किंतु अधमारा कर दिया, उसकी एक जगह ऐसे जोर से मारा जो टूट गया, एक जगह टूटने पर बाद में वो उठ नहीं सकता। काजे इसको जंगल में फेंका तो जंगल में फेंका है, जलाना मत। इसके बाद में पीछे से नारद जी गए, कैलाश अब तो तेरी कमर टूट गई ना, अब चलेगा? जिनके लिए ये धन कमाया, जिनके लिए रक्षा की, जिसके लिए तू बैल हुआ, जिसके लिए सांप और कुत्ते सब हुए, आज उन लोगों ने तुम्हारी सब कर्म कर दी, इन्होंने तेरी टांग तोड़ दी, तेरी कमर तोड़ दी, अब क्या करेगा? अब चलेगा? कहा है बाबा मुझको पहले चलना चाहिए था, मैं नहीं गया, अब नहीं रहूंगा, अब हम लोगों ने हमारी ये दुर्दाश इन लोगों ने कर दी, अब ये आप कृपा कीजिए कि मैं चलूं। अच्छा ठीक, बस पानी खाया उसके ऊपर में छिड़क दिया, उसमें से जिससे क्लैश की आत्मा निकली और उसके साथ इस चीज को समझो, समझो अच्छी तरह से, तुम्हारे लड़के ही कमर तुम्हारी रीढ़ तोड़ेंगे, कमर तोड़ देंगे और घर से निकाल देंगे, बूढ़ा अब खांसता है, नींद नहीं आती हमारी बीवी को, यहां से निकलो। और बहू कह दिया है तू खांसने के लिए आया है, हमारे बच्चे को नींद नहीं आती है। अच्छा ठीक है, उसके पीठ पर झाड़ू से साफ करेगी, जो घर में झाड़ू दिया जाता है उसके पीठ को साफ करेगी। अच्छा अच्छा भाई तो भी नहीं जाना चाहता, इसलिए ऐसा मत बनो, भगवान का भजन करो, समय से पहले ठीक हो जाओ, भगवान के लिए दूत आए, विष्णु के दूत और सुने बैठे जाए, भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनो, अपना जीवन का आज हम लोगों का भागवत यहाँ पर समाप्त हुआ, अभी आरती होगी, कल हम लोग 9 बजे से पहले 8 बजे यहाँ पर जैसे समय पर आते हैं आएंगे और थोड़ा सा यहाँ पर भागवत का महत्व हम लोग वर्णन करेंगे और महत्व वर्णन करके हम लोग भागवत को अपने जैसे ले आए थे कीर्तन के साथ वैसे अपने सिर पर प्रोसेशन के साथ में इनके घर पर पधर आएंगे साधु संत लोग और वहां पर पूर्णाहुति होगी यज्ञ की स्वाहा स्वाहा और उसमें डाल करके फिर हम लोग वहाँ पर जो भगवान का प्रसाद होगा, प्रसाद लेकर के सबको हम लोग वितरण करेंगे और हमारी ये पूर्ण होगी। आप लोग उसमें कल अंतिम दिन में जरूर आप लोग भाग लेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर भागवत की पूजा पहले करके उनका हाथ करेंगे। आप लोग सभी लोग घर से पुष्प लाएंगे और हम लोग उन पर अर्पित करेंगे अपने, वो पुष्प नहीं, पुष्प जैसा कोमल हृदय, मीठा सुगंधित हृदय, उसको कृष्ण ग्रहण करते हैं, वो हम भागवत करते हैं। महामंत्र
चंद्राय राधिकाय नमो महाप्रसन्नाय कृष्णप्रेमाय यं प्रभजन् समन्ते द्वैतायनो गिरह कातरया जिहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विने जब कृष्णचंद्र जी पृथ्वी को छोड़कर गोलोक वृंदावन में चले गए, अर्जुन लौट गए हस्तिनापुर में, वो लोग भी उत्तराखंड में चले गए, परीक्षित को राज्य दे दिया। उस समय परीक्षित महाराज जी हस्तिनापुर से लौटकर मथुरा में आए और कृष्ण के पुत्र प्रपौत्र वज्रनाथ को मथुरा का राजा बनाया। उस समय मथुरा सुन्न स्थान में पड़ी थी। उस समय में चारों तरफ जंगल हो गया, मथुरा पूरी नगरी भी नहीं मिली और द्वादश वन जो थे, जो कृष्ण के नंदगांव बरसाना राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन वृंदावन का जंगल हो गया। उस समय में परीक्षित महाराज जी आए और अपने वहां से हजारों ब्राह्मण परिवारों को ले आए, वहां से बनियों को ले आया, विपुल विपुल जातियों को लोगों को लेकर के बताया और तब मथुरा पूरी नगरी बनी। उस समय में परीक्षित महाराज ने शांडिल्य ऋषि को बुलाया और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया और बोले कि जहां जहां कृष्ण की लीलाएं हुई थी वहां पर कुछ चिन्ह बनाए जाए। वृंदावन में उन स्थानों का पता लगाया जाए कि कहाँ पर कृष्ण का रास हुआ था, बंसीवट कहाँ था, केसी घाट कहाँ था, कहाँ पर काली हरद था, कहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड था, कहाँ पर और सब स्थल थे। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया गया, गोपीनाथ और मदन मोहन सिंह विग्रहों की स्थापना की, गोपेश्वर महादेव की स्थापना की गई, बंसीपट को स्थान को जरा अच्छी तरह से बना दिया गया, मथुरा में केशव जी का मंदिर बना, केशव देव का, गोवर्धन में हरिदेव जी का जो कि गोवर्धन पर्वत को उठाया था उनका विग्रह स्थापन कराया, इस तरह से कामेश्वर महादेव कामेवन में, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर गोकर्णेश्वर इत्यादि महादेवों की स्थापना की गई और जहां जहां वन थे वहां पर सरोवर,
कहीं कहीं पर मंदिर इस तरह से सब कृष्ण की लीला स्थलियों को प्रकाश किया। प्रकाश करने के बाद में कृष्ण की और रानियां जो थी वो भी द्वारका से वहां पर पहुंच गई। सब रानियों को उन्होंने दिए और बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया और वहां से वो लोग गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन की परिक्रमा की और परिक्रमा करके उद्धव कुंड नाम का एक स्थान है जहाँ पर उद्धव जी घास बने हुए हैं गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए। आशा महो चरण रेणुकाम, उन्होंने प्रार्थना की थी कि जो गोपियां कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा करती हैं उनका हमें दर्शन हो, उनकी चरण की धूलि की हम वंदना कर सकें, एक भी धूलि की तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं घाट पर करके रहना चाहता हूँ। तो वहीं पर गिरिराज गोवर्धन में जहाँ वो घाट बने थे कुसुम सरोवर के पास में, वहीं पर ये लोग सब पहुंचे, परीक्षित महाराज जी और ब्रजनाथ जी और उनकी माताएं और सब लोग वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंच करके उन्होंने कीर्तन करना आरंभ किया। कीर्तन करते ही उद्धव जी खास जो बने गए थे वो उद्धव जी बन करके वहां पर प्रकट होकर के उस कीर्तन में नाचने लगे। इतने में लोगों ने देखा कि अर्जुन मृदंग बजाने लग गए, देवता लोग सब वहां पर उपस्थित हो गए और सभी लोग मिल करके कीर्तन करने लगे। कृष्ण की जितनी रानियां थी वो भी उपस्थित हो गई और सब रानियां भी वहां पर आ गईं। और इसके बाद में देखा जय राधा कृष्ण अपने परिकर के साथ में ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता और सब लोगों के साथ में वहां पर उपस्थित होकर के सभी लोग रास जैसा कीर्तन करने लगे। सब लोग उनको प्रत्यक्ष देखा। उद्धव जी तुम्हारे आनंद के फूले नहीं समाते, वो नृत्य करते 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 विभोर हो गए। थोड़ी देर तक ऐसा प्रसंग रहा, कृष्ण को साक्षात सब लोगों ने दर्शन किए, गोपियों को दर्शन किए और थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे कीर्तन समाप्त यही हुआ तो ही यह दृश्य भी गायब हो गया। तो ये सब हुआ था, उसको कहते हैं उद्धव कुंड, कुसुम सरोवर के पास में गोवर्धन की परिक्रमा के रास्ते में पड़ता है और उसके बाद में सब नित्य लीला में प्रवेश कर गए। भागवत का फल यह है, श्रवण करने का फल, यदि भक्ति प्रेमा भक्ति होगी तो कृष्ण जरूर राधा जी के साथ में दर्शन देंगे, फिर जन्म नहीं होगा, यही भागवत का उत्तम फल है। आप लोग यदि धन धान्य की लालसा करेंगे तो धन धान तो मिल जाएगा, पितृ पुत्र परिवार पति सब मिल जाएंगे, किंतु ये भागवत का फल नहीं है, इसे बंधन होता है, बंधन में मत पड़िए। राधा कृष्ण की एकांतिक भजन कीजिए, देवताओं का भजन करेंगे तो रुपया पैसा धन दौलत ये दे देंगे और उसमें आप बंधन में जकड़ जाएंगे, फिर निकलने का रास्ता नहीं होगा, 99 का पेड़ लग जाएगा। इसलिए भागवत का एक ही फल है, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, राधा जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही एकांतिक प्रार्थना हम लोगों को करनी चाहिए, इससे बढ़कर के उनको प्रार्थना। उद्धव जी या सुखदेव गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी नंगे रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, भागवत पाठ किया तो कुछ मांगा उन्होंने श्रोताओं से, न श्रोताओं को उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया। भगवान का कथा जानने वाला, भगवान का भजन करने वाला संसार का कोई भी पदार्थ नहीं चाहता, चाहता कि राधा जी के चरणों में हमें प्रेम किया। श्याम सुंदर श्रीखंड शेखर स्नेहा, हे श्याम सुंदर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, हमने सुना है ये भागवत और कुछ नहीं कृष्ण ही है, क्या है, समाधि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुनितावतारम अपार संसार समुद्र के तू भजाम, हे भागवत ये भागवत कृष्ण का स्वरूप है। मनुष्यों को 10-12 अंग होते हैं, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद ही उनके अंग है। श्रीमद् भागवत का दसवां स्कंद उनका हृदय है। इस तरह से वो सबल स्कंदों को बतला है कि उनका कौन कौन सा अंग क्या क्या है। इस तरह से श्रीमद् भागवत कृष्ण है, इसलिए कृष्ण प्रसन्न हम लोगों पर हो। राधा जी की सेवा करने के लिए हम उनकी दासी उनकी सहेली बन गए, इससे बढ़कर के और कोई उत्तम वर नहीं हो सकता है। तो जो लोग प्रार्थना करेंगे कृष्ण या श्रीमद् भागवत उसको वही, और नीचे का वर मत मांगना, देने से भी मत लेना। बस यही भागवत का फल है, एक राधा कृष्ण में चित्त लग जाए और कुछ नहीं करना। अभी हम लोग श्रीमद् भागवत की आरती पूजा करेंगे, उनके चरणों में पुष्प देंगे। आप लोग यहाँ से पुष्प ले लेंगे, एक भाई थाला में पुष्प सजा दो और उसमें से एक एक पुष्प ले करके और उनके भागवत के चरणों में लेना। अनिवेदित पुष्प हो, निवेदन किया हुआ पुष्प नहीं, अनिवेदित पुष्प हो, और उनको चरणों में हम लोग दे करके और उनसे प्रार्थना करेंगे। पहले चलिए हम लोग कीर्तन करते हुए आरती करेंगे, आरती करने के बाद में परिक्रमा करेंगे और फिर अपने अपने हाथों में लेकर के उनको पुष्पांजलि। चलो आरती एक थाले में पुष्प लेकर के रख दो। मास्टर ऑफ बैचर ये सब जो चीजें हैं, ग्रेजुएशन इत्यादि है, सिविल शिक्षा है, किंतु एक उच्च है, एक उच्चतर है, एक उच्चतम है, तीनों में तारतम्य है। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान कौन है। ये जो ज्ञान है ये पूज्य ज्ञान है, दूसरे अध्याय में उन्होंने बताया। और ये शरीर पुराना होगा, इसको छोड़ना होगा, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, इसलिए अर्जुन तुम किसी को नहीं मार सकता। ये अजर अमर निश्चर शाश्वत सनातन, ये पूज्य ज्ञान। पूज्यतर ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हमारे हृदय में है, जैसे अर्जुन तिष्ठति सामनं तत् भूतानि जंतुर्नाहि पायः। वो भी भगवान का अंश परमात्मा है, किंतु जो ब्रह्म और परमात्मा का मैं मूल हूँ उसको संयोग में उन्होंने बताया मैं। इसलिए उन्होंने अंत में कहा सर्वगुष्यतम भूय मे परम वचन, तब से तुमको गुण बदला रहा हूँ। एक चीज को समझो, ज्ञानियों तो बड़े योगी थे, तपस्वी थे योगी बड़े, कर्मी से बड़े योगी, इसलिए तुम योगी बनो। कैसा योगी? योगी नाम सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा। समस्त योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से मुझको भजन करता है, ये जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सम्मान हूँ, मैं परमात्मा सबका आदि हूँ। और ये जब तक कर्म अधिकार है कर्म करो, किंतु अपने लिए मत कर, भगवान के लिए कर, जब क्या था, और नहीं तो कर्म बंधन हो जाएगा, तुमको जन्म मरण में चक्र में आना पड़ेगा। और ज्ञानी बनो तो कैसा, बहुना जन्म ज्ञान मान माफ हो, वास्तुदेव सर्वम इति सब महात्मा। अरे ज्ञानी बनो तो कैसे, जो भी ज्ञानी जन्म जन्मांतर के बाद में मुझको समझता है कि मैं वास्तुदेव, इस जगत का आदि अंत मैं ही हूँ, इसलिए हमारे प्रति वो सब समय लगा रहता है, ऐसा ज्ञानी। और इस जिसमें भक्ति नहीं है वो ज्ञानी और कर्मी न कर्म योगी है न भक्ति योगी है, जो इसलिए भगवान का ये दिया हुआ जो कर्म करेंगे किंतु कैसा कर्म भगवान की उसके चित्त शुद्धि होगी, फिर ज्ञान और सत्य प्रकाश होगा और उसके बाद में तब पराभक्ति होगी और ब्रह्म पुरुषा प्रसन्ना समस्त देश मत सबसे लगत करके उनका धन्य हो जाता है और जब तक जीवन है तब तक कुछ न कुछ उसको कर्म तो करना पड़ेगा तो वो कर ज्ञान भी रहेगा किंतु वो भगवत संबंध भी जाएगा। ये
किया जा सकता है किंतु
उसको केवल योग शास्त्र कहेंगे तो प्रण का अंत उसका पता है। यदि समस्त उपनिषद है इसलिए गीतोपनिषद कहा गया, केवल योग शास्त्र नहीं इसलिए गीता उपनिषद है। उपनिषद माने उपनिषद, जिस विद्या के द्वारा भगवान के निकट पहुंचा जा सकता है उसको तो माने निकट, इसलिए गीता को भी उपनिषद है। अच्छा, उपनिषद कहते हैं वेद को भी, जैसे वेद और उपनिषद दोनों एक ही, इसलिए गीता को वेद भी कहने से कोई हर्ज नहीं। बस कलर क्वालिफिकेशन हम इसका क्लासिफिकेशन किया जाए। बहुत सुंदर आपने कहा थोड़ी दो बात, एक बात
तो समझ में नहीं आता ये क्या है।
देखिए, दो आदमी जो सखा होगा जैसे दो सखा हमने तो दोनों एक बराबर, गुण भी सखा का बराबर होगा तभी सखा होगा। तो यदि कृष्ण का अर्जुन सखा है तो कृष्ण जैसे ब्रह्म है अर्जुन भी वैसा है, नित्य जगत से दोनों आए। अर्जुन एक अज्ञानी बनने का, माया से मुक्त होने का अभिनय करता है, किंतु है नहीं वो,
वो संपूर्ण नर बोलता है
नमपूर्ण, वो ज्ञान भक्ति सब कृष्ण का सखा है। कृष्ण अपने सखा को ऐसा बना करके जीवन को देखते रहे हैं कर रहे। ये शरणागति जो होती है बहुत नीचे की चीज है, तो उनका सखा है एक साथ पलंग पर सोने वाले, एक समान दोनों का ज्ञान, वो ब्रह्म है पर ब्रह्म है, ये थोड़ा सा ठीक आप जो करें वह सब ठीक है, किंतु मैं ये कहता हूँ कि उनको यदि गीता का किसी को ज्ञान समझना है तो कृष्ण यदि और मैंने सर्वशक्तिमान है और वो जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं तो उनको शरणागत होने से ही गीता का ज्ञान तो उसको दे देंगे। यही तो अंत में वो कहते हैं कि तुम हमारा शरणागत हो जो तुमको जो कुछ देना है, किंतु जीव इतना नहीं कर सकते, वो कह दिया मैं समझूंगा तो तुम तो नहीं समझे।
स्पिरिट
बस ऐसा ही होना चाहिए कि उनको, हम तो यही नहीं जानते कि कल मरेंगे आज मरेंगे क्या होगा कहाँ जाएंगे, बस ये समर्पण करके जैसा गीता में उन्होंने कहा है क्या उसको विश्व बस भगवान का स्मरण करते हैं।
नहीं वो तो हम फॉलो करते हैं लेकिन उसमें एक डाउट आता है कि इस वजह से एक भी की वजह से मेटाबॉलिकल फॉर्म टू एनेबल द पीपल टू अंडरस्टैंड स्टार्ट आउट देयर ओन लाइफ। देन यदि ये वो भी क्या नहीं चाहिए ऑल्सो मेटाबॉलिक फॉर एनेबलिंग द पीपल टू अंडरस्टैंड दिस निवृत्ति एंड प्रोग्रेस अल्टीमेटली इट इज निवृत्ति दैट इज गोइंग टू अचीव मोक्ष।
गीता में ही कहा गया अर्जुन, ये पहली बात मैं नहीं कह रहा, मैंने आज के करोड़ वर्ष पहले सूर्य देव को और उन्होंने मणि को प्रणाम किया, उन्होंने बात की। इस प्रकार से इन गुरु परंपरा लाइन वैष्णव, इसलिए मैंने कहा वहां पहले सूची के रूप में पीछे से व्यास देव जी ने इसका लेखन अवसर से सोचा, इसलिए किसी ने इसको रचा ऐसा मत, ये परमानेंट
है
जैसे स्पष्ट बोलो। ये सतयुग में ये बोला गया न द्वापर में न अब बोल रहे हैं, ये नित्य है, किसी के मुख से ये निकलता है उसको हमने लिखे पहले, किंतु ये रियल चीज है, नित्य है, सनातन है। ऐसे ही कृष्ण भगवान है, वेद नित्य है, वेद कोई कागज पर लिखी हुई अक्षरात्मक कोई चीज नहीं, वो तो ज्ञान है, उसको अक्षरात्मक रूप में व्यास जी ने या किसी ने दिखा,
नॉलेज,
इसलिए नॉलेज जो है उसके अंदर में है वो ये नहीं है, वो भगवान के द्वारा होती है, वो दूसरे के द्वारा ये किसी से, और वो प्रूफ ऐसा है फंडामेंटल को, यदि आदमी प्रणागत हो जाए तो अपने आप रियलाइज हो जाए। ये ऐतिहासिक या ऐसे लोग जो हैं वो इस पर विश्वास नहीं करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते, आत्मा पर विश्वास नहीं करते, यही गड़बड़ी है। यदि विज्ञान कुछ दिन के बाद में उन्नत हो जाए तो एक दिन समझेंगे कि हाँ
बट
इसका एक ही उपाय है, जब उनको टाना को तो ये आज ही आप जाए, अपनी बुद्धि से आप नहीं जाए, अपनी बुद्धि से तो ये भी नहीं जान सकते ये तुम्हारे पिताजी हैं, कैसे प्रमाण करो आप जो कीजिए जैसे ये आपके पिता है, हैव यू सीन, हैव यू रियलाइज, आर यू हैव मनी ट्रस्टेड योर मदर, तुम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, ये जो फंडामेंटल ट्रूथ है, समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं कोई समझ सकता। वो यदि उनके शरणागत हो जाए, मैया का शरणागत, मैया तुमको कहेगी झूठ नहीं कहेगी, यदि झूठ करती है तो तुमको
परिमाण से ही आता है,
भगवान हैं हमारे अंदर हैं बाहर हैं भीतर हैं, उनसे यदि प्रार्थना करो कि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप क्या है, फंडामेंटल ट्रूथ क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, असल में ज्ञान ज्ञान क्या है, वो अपने आप किया लाइफ। एक छोटा सा बच्चा है रो रहा है, मैया समझ जाती है कि ये दूध सूखा है, घर सत्संग दे दिया वो पी लिया। ऐसे ही यदि हम इसके लिए उनसे प्रार्थना करें, जैसे आप हैं मैं आपका शरणागत होता हूँ, प्रणामी बुद्धि योगम मैं उसको और समझ जाऊंगा, इसलिए समझना बहुत, एक बहुत बड़ा विद्वान नहीं समझ सकता, एक मूर्ख व्यक्ति भी यदि वो शरणागत होगा तो वो मान ले कि आप हैं दो भाई हैं, एक भाई तो खूब बड़े विद्वान है और एक भाई मूर्ख है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, किंतु पिता और माता जी की सेवा करता है, खूब आपको उधन नहीं देंगे, उल्टा देंगे, बुद्धि पर आपका विकास हो गया और बहुत ही कमाने लगे, रुपये कमाने में चर्चा देंगे तो अपने आप कर लेगा, इसलिए दूसरा जो पिताजी की सेवा करता है उसको देंगे, जैसे उसका उसमें बराबर भाग है, पिताजी जैसे भी हो बुद्धि से लगा सकते, जैसे तैसे उसको कुछ देंगे, ऐसे ही भगवान जो भगवान का शरणागत होगा जरूर उसको देंगे।
वही जो है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट इज जस्ट लाइक शुगर, यू कैनॉट से व्हाट इज स्वीट, इट्स इम्पॉसिबल, नोबडी कैन डिफाइन, नोबडी कैन डिस्क्राइब, देन व्हाट वी डू वी स्वीट बाय द
सेंटर,
that put sugar on your tongue and what you feel, that is aisa bhagwan ke vaste jab ye shelter spirit hai
ye to hamare liye kaha gaya ha kintu jo jalai to hai ki ye dono mein antar hai, ek bhagwan hai isko, ek jalai to hai
और दूसरा है जो कि माया के द्वारा आबद्ध है,
फिजिकल इंटेलेक्चुअल नॉलेज
नहीं, फिजिकल इंटेलेक्चुअल नॉलेज से संबंध नहीं रखता, वो आत्मा है,
स्पिरिट अल्टीमेटली
स्पिरिट और ज्ञान एक नहीं। ज्ञान कहते हैं बुद्धि से जो हम रिलेशन करते हैं,
स्पिरिट तो परमात्मा,
और वो स्पिरिचुअल जो भाव होते हैं वो शरणागति के ऊपर में, भक्ति के ऊपर में, अनकंडीशनल सरेंडर के ऊपर में वो रखता है, वो नित्य है, अभी कवर्ड है। और जिस समय ये कवर्ड खुल जाए, बुद्धि और ज्ञान, ये विद्या, ये सब फट जाएगा, और जो आत्मा का परमात्मा का जो
फॉलो अद्वैत,
दोनों एक ही है, दो है, अद्वैत और द्वैत, और द्वैत में द्वैत है ना? नहीं तो फिर हुआ नहीं, इसलिए अद्वैत में दो की मानना पड़ेगा, नहीं यदि मानेंगे तो कितने अद्वैत शब्द कैसे बने? यदि द्वैत है ही नहीं है, दो है ही नहीं, तो बना कैसे?
एक आत्मा परमात्मा दूसरे का मेरा, लेकिन दीज आत्मा दे आर वन,
नहीं दो है, एक नहीं। कौन कहता है कि परमात्मा कहते आने वाला कौन है? तुम कह रहे
परम आत्मा दैट इज अनदर आत्मा।
मैं समझ गया आपकी बात को, मैं ये पूछता हूं अभी जो मैं परमात्मा को नहीं ज्ञान रहा हूं, तो परमात्मा को भूल कैसे गया? यदि तुम परमात्मा,
हाँ वही मैं बोलता है, तो परमात्मा और आत्मा एक है,
नहीं है यही प्रकार
वही तो होगा,
नहीं
कुछ वही तो होगा।
अच्छा आपके लिए आंख और ये आंख और ये मुंह कितने अंगनिष्ठा मिला करके एक है ना, ये अलग अलग है
एक है ना,
ये आंख वो आंख एक नहीं है, ये आंख वो अंधा करने की आंख नहीं अंधी है,
किसी के भी ध्यान नहीं पता
है ना,
अब किसी को
उसी तरह से ये यूनिवर्स है, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एक राजा है, एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बन गया, एक बड़ा सा देश उसमें करोड़ों आदमी रहते हैं, करोड़ों उसमें आदमी मंत्री की है, सब मिला करके एक प्रेसिडेंट हुआ, प्रेसिडेंट एक वोट एक चीज नहीं किंतु है ऐसे ही भगवान एक होते हुए भी उसमें जगत है, जीव है, ये है, हम ब्रह्म नहीं है, नहीं तो यदि ये आया कि मैं ही ब्रह्म है तो तुम अज्ञानी कैसे बना? ब्रह्म को तो सब समय ज्ञान रहता है, तो तुम्हारा ये जो बुद्धि है मन है कौन खत किया, तुम क्यों कैसे बन गया? कौन कहता है
ये
कौन कहता है? कौन कहता है? आप कहते हैं
ब्रह्म ही कहते हैं,
ब्रह्म कहता है ना, तुम नहीं कर सकते, तुम ये भी नहीं जानते कि जैसे अभी मर जाएगा कि कब मर जाएगा, इसे आप ब्रह्म नहीं कर सकते, कहेगा कौन? ब्रह्म जो कहेगा वो है, इसलिए आप ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के दास हैं, उनके अंत गीता में कहते हैं ममई वन तो
जीव लोग के जीव भूत बना सकते,
मैंने जब से भगवान है कृष्ण तब से ये जीव है, जीव अनंत है, नहीं तो हम कहां से आए? हाँ ये बदला था, ये परमेश्वर ये सोचेगा, आप मत सोचे, नहीं आपको स्त्री के पास में जाने की क्या जरूरत है, बेटा नहीं समझो, आप समझो, इसको जो सोचना है जो मालिक है वो सोचेगा, ये ब्रह्म सोचेगा, देखिए
यू वॉन्ट इनफर
आपको जो अधिकार से बाहर मत जाओ, अधिकार से बाहर नहीं जाना है, इसलिए वेदों में कहा सत्तु लीला कैवल्यम वेदांत, लीला के लिए, अब लीला किसको कहते हैं, अब उसमें डिफाइन किया गया निरुक्त में
तब उसको जानने के लिए वेद वेदांग में छह वेद अंग है, यह सब पूरा ज्ञान करके जीवन से लगा देंगे तभी नहीं जाएंगे। ब्रह्मा भी हाथ जोड़ कर देता है प्रभु मैं आपको ज्ञान नहीं सका, आप बुद्धि भी दीजिए आप सका। इसलिए जीवन थोड़ा है, बहुत फल है, प्रथम जनागति के जो जनाना होगा वो सब जना बहुत ईजी है, हम लोग उसके लिए चेष्टा नहीं। एक किसी किसी के जो ऑर्गन है वो कोई विश्व का वैज्ञानिक नहीं बना सकता, हमारे अंदर में बुद्धि को किसने बनाया, मैया ने जन्म दिया किंतु बुद्धि कहां था किसने गंदा है तुम्हारा तो जुड़ा कुछ और नहीं बनेगा। ये बात है कि नहीं रहेंगे किंतु शुद्ध अवस्था में जाएंगे, इन सब चीजों को समझ सकते किंतु क्रिएशन नहीं है उसी के हाथ में बुद्धि बुद्धि देना मन क्या चीज है कैसे बने उसके एक ही करण में कभी कैसे पहुंच रहा है कैसे क्या क्या हो रहा है पढ़ा जाए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो जानता है वो कहे कि मैं जानता हूं किंतु वो मूर्ख है, आकाश का तारा और पृथ्वी का बालू के कण भी लेना सहज है किंतु भगवान के जो गुण एक्चुअली दोस्त हैं इसको ध्यान देना बड़ा सा कठिन है। बस शरणागत होकर के उनका भजन करो मैं तुम्हारा बहुत प्रसन्न हुआ
बहुत में आएगा मथुरा बिकॉज इट क्रिएट्स सो मेनी डाउट्स इन द माइंड।
नहीं हमको आज तक जीवन में कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट नहीं, और मैं जानता हूं बहुत कुछ हो यदि वो कृपा करता है तो
कोई
डर